ओम शांति। हमारे बीच बाबा के अनमोल रतन आदरणीय मोहन सिंगल भाई जी उपस्थित हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से आपका इस पट्टी में स्वागत करते हैं। पैसा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय भाई साहब को लखनऊ विश्वविद्यालय में जब आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे तभी आपको बाबा का ज्ञान मिला। आपने धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से मास्टर डिग्री प्राप्त की हुई है, एमटेक किया हुआ है आपने। ओएनजीसी में आपने 28 वर्षों तक कई प्रोजेक्ट्स पे कार्य किया और इस कार्य अर्थ आप जहां भी गए, आसाम, गुजरात, उत्तराखंड वगैरह में, वहां वहां आपने बाबा के सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। 1996 में आप सुपरिंटेंडिंग पद से बाबा की सेवा के अर्थ वॉलंटियरी रिटायरमेंट लिया। आप जब से बाबा के ज्ञान में आए तब से ही बहुत सारी सेवाओं के साथ जुड़े हुए रहे। वर्तमान समय में आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। आप संस्था के मैनेजिंग कमिटी के भी मेंबर हैं। आप साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के चेयरपर्सन हैं। आप ज्ञान सरोवर परिसर के एकेडमी कोऑर्डिनेटर के पद पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो साइंटिस्ट इंजीनियर विंग की त्रैमासिक पत्रिका निकलती है उसके भी आप संपादक हैं। आपके निर्देशन में भारत और कई राज्यों में और नेपाल में भी 22 पर्यावरण जागृति और आपदा प्रबंधन अभियानों का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। कई राज्यों में आप मेगा प्रोग्राम करने के निमित्त बने। 85 में जब अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित हुआ उस समय भी बाबा के संस्था की तरफ से 12 पद यात्राएं निकली और आप उस समय यूथ विंग के सचिव पद पर थे। आपने के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लिया हुआ है। आपके विज्ञान, आध्यात्मिकता, पर्यावरण के ऊपर, सुरक्षा प्रबंधन के ऊपर आपके लेक्चर से सारे भारतवर्ष में आपने बहुतों को लाभान्वित किया है। कई प्रदर्शनियां बाबा ने आपसे निर्माण करवाया, औद्योगिक शांति, बच्चों का उत्थान, युवा विकास, शिक्षा में नई दिशा आदि आदि। भारत में लगभग 20 शहरों में आपने स्पिरिचुअल आर्ट गैलरीज का भी निर्माण किया है। बाबा की सेवार्थ आपने भारत के अलावा यूएसए, यूके, रशिया, नेपाल, विदेश के कई शहरों में, कई राज्यों में आपने यात्राएं की हैं और वहां के आत्माओं को लाभान्वित किया है। आपके कुछ पुस्तक इस प्रकार से प्रकाशित हैं, विज्ञान, अध्यात्म, नैतिकता और पर्यावरण, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, श्रेष्ठ संसार के लिए सार्वभौमिक सहयोग, शिक्षा में नई दिशा, ग्राम उत्थान। इस प्रकार से पर्यावरण क्षेत्र में उत्कर्ष सेवा के लिए 92 में भारत सरकार के द्वारा आपको पर्यावरण श्री के अवार्ड से सम्मानित है। तो बाबा कहता भी है सत्युग में प्रकृति हमें दुख नहीं देगी, तो आप उस सेवा के निमित्त हैं। और इसके अलावा यूएसए और यूके द्वारा भी आपको 2 इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त है। राजस्थान सरकार के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा आपको ग्रीन आइडल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और वर्तमान समय में भी अभी आपने डिजास्टर मैनेजमेंट पे अभियान निकाला हुआ था और शायद अभी आपको मालूम पड़ा नहीं पड़ा, जब भाई साहब आए तो लाइट नहीं थी इसलिए आप सभी ने व्हाइट लाइट पे योग किया। तो ऐसे ऐसे परिस्थितियां जब आएंगी तो मन की स्थिति को कैसे अचल रखें, क्योंकि अभी वर्तमान समय हलचल का समय है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ये हलचल वाली परिस्थितियां ट्रायल है या फाइनल, वो आप कैसे समझोगे। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जब तीनों बातें एक साथ हो, जब प्राकृतिक आपदाएं, ग्रह युद्ध और सिविल वॉर और प्राकृतिक आपदाएं प्लस ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, ये एटॉमिक वॉर, जब तीनों परिस्थितियां एक साथ लगे कि हाँ आसार है, तो समझना वो फाइनल है। तो आज भाई साहब का टॉपिक भी यही है, अचल, अडोल और एक स्थिति हम कैसे बनाएं। तो निवेदन करती हूँ आदरणीय भाई साहब को कि हमारे बीच इस बात को क्लियर करेंगे। भाई साहब के लिए इतना ही कहना चाहूंगी, सागर में हमेशा मोती नहीं मिलते, आसमां में हमेशा तारे नहीं मिलते, चमन में हमेशा फूल नहीं खिलते। मोहन भाई साहब जी, आप जैसा रतन यज्ञ में जल्दी से कोई नहीं मिलते, जल्दी से नहीं मिलते।
परिचय तो बहन जी ने बहुत लंबा चौड़ा दे दिया, काफी अवार्ड्स भी गिनवा दिए, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड तो रह ही गया शायद, मालूम ही होगा कौन सा, जो साकार बाबा मम्मा के साथ रहने का मौका मिला। बाबा के साथ तो लगभग 7 वर्ष, 1962 में ज्ञान में आए थे और 69 तक, तो ये तो जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड है। और इसमें भी अवार्ड्स में भी और भी सबसे ऊंचा मैं समझता हूँ होम अवार्ड, कि 18 जनवरी को जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो 17 जनवरी पूरा दिन और 18 जनवरी दो दिन हमें बाबा ने जैसे मधुबन में बुला लिया, बहुत दूर आसाम में थे, तो बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का, अनुभव करने का, वो जो एक गोल्डन चांस कहें, डायमंड चांस कहें, वो हम अपना सबसे बड़ा जीवन का अवार्ड समझते हैं, क्योंकि हम सबको उस अवस्था को प्राप्त करना ही है। इसीलिए इस अवस्था में जाने के लिए मैं ऐसे समय में आज सबसे पहले मुझे मामा की स्मृति आ रही है, क्योंकि मामा ने जब शरीर छोड़ा 1965 में जून में, तो मामा कहीं सूक्ष्म वतन में, मामा का शरीर तो यहीं था हिस्ट्री हॉल में, सब लोग योग कर रहे थे, साकार बाबा भी योग कर रहे थे, मामा का आह्वान भी कर रहे थे। और उस समय की बात है, आपने शायद सुना भी हो, मामा सूक्ष्म वतन में पहुंची मामा की आत्मा, और वहां पर बाप दादा ने पूछा, बाप दादा इसीलिए कह रहे हैं कि सूक्ष्म साकार में तो बाबा यही थे, वहां सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ने मामा से पूछा, मामा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने कहा कि जाओ बच्ची, अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, और जाओ उस शरीर में प्रवेश करके पुनः कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो मामा की आत्मा नीचे आई, अपने ही उस शरीर में प्रवेश की, तो मतलब वहां पर मामा काफी देर तक नीचे हिस्ट्री हॉल में रही, और हिस्ट्री हॉल में रहने के बाद काफी देर बाद जब मामा ऊपर गई, तो ऊपर बाबा ने कहा, पूछा, बच्चे अनुभव किया? तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो अभी भी अनुभव करके नहीं आ सकी। क्यों बच्ची, तुम्हें भेजा ही इसलिए था कि कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। तो मामा ने कहा कि बाबा मैं नीचे गई और मैंने बहुत बहुत पुरुषार्थ किया कि मैं शरीर में प्रवेश कर सकूं, लेकिन मैं प्रवेश ही नहीं कर पाई शरीर में। क्यों? क्योंकि शरीर तो ठंडा पड़ चुका था, उसमें कोई हलचल नहीं थी, और जब मैं प्रवेश ही नहीं कर सकी उसमें, कोई उसमें चुरपुर नहीं हुई शरीर में, तो भक्ति मार्ग में भी जो गायन है कई रीति से जब आत्मा निकलती है तो आँख खुली रह गई तो आँख से निकल गई, या मुंह से खुला रह गया मुंह से। तो मैंने जो भी भक्ति मार्ग में गायन सुने हैं सब रीति से ही पुरुषार्थ किया मैंने, लेकिन मैं तो प्रवेश कर ही नहीं सकी। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्ची अभी प्रवेश नहीं करा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किए बिना तो कोई परम धाम जा नहीं सकता अपनी सीट पर, क्योंकि सबको परम धाम जाके अपनी अपनी सीट पर ही विराजमान होना है। तो अभी तो तुम्हें नया जन्म लेना पड़े और नया पुरुषार्थ करना पड़े जिससे तुम अंत में कर्मातीत स्थिति का और संपूर्ण रीति से अनुभव कर सको, और फिर उसके बाद जब आओगे तो बाबा मामा आप और बच्चे सब फिर परम धाम उसके बाद ही जाएंगे। तो उस समय मामा को बाबा ने नए शरीर में भेज दिया। और एक बात की खास हिदायत भी दी और बताया कि बच्चों को भी सबको कहना कि जब तक कर्मातीत स्थिति का उन्होंने अनुभव नहीं किया बच्चों ने, तब तक वो परमधाम तो जा नहीं सकते, तब तक तो इसी चक्र में घूमते रहेंगे। इसीलिए कर्मातीत स्थिति का अनुभव हर बच्चे को इसी शरीर में करना है जो संगम योगी शरीर ये बाबा ने दिया है। कभी भी किसी बच्चे को ये नहीं संकल्प आना चाहिए कि मेरे पास मानो धन का अभाव है, तन बीमार है, या मन जो है बहुत चंचलता में है, संबंधों में कटुता है, कोई भी चीज की यहाँ पर अगर कमी किसी बच्चे को महसूस होती है तो वो वास्तव में कमी नहीं है, लेकिन बच्चों के पेपर का एक स्वरूप है जिससे कि बच्चे अंतिम पेपर के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए ये कभी नहीं आना चाहिए कि मेरा शरीर छूटे, ये चीज का अभाव है, कमी है, और शरीर छूटे मैं जाऊं और नया शरीर लूं। जितना सबसे अच्छा शरीर पूरे कल्प में संगम योगी शरीर ये बच्चों जो बच्चे को मिल सकता था, हर बच्चे को वो शरीर, वो संबंध, वैसा तन मन धन संबंध सब चीज उसके अनुसार ही मिला है, और कर्मातीत इसी शरीर में ही बनना है, ये संकल्प हर बच्चे का रहना चाहिए। और इसीलिए बाबा भी रुका हुआ है अभी सूक्ष्म वतन में, और बच्चों को भी यही बात कहते हैं। तो मम्मा भी अंतिम दिन ये ही हिदायत सब बच्चों को दे के गए बाबा ने मम्मा के थ्रू, ये बात सब बच्चों को कही। तो इसीलिए एक तो हम बच्चों को भी ये अवस्था कैसे प्राप्त होगी कर्मातीत अवस्था भी, जैसी ब्रह्मा बाबा ने 17-18 जनवरी को मुझे अपनी इन आँखों से बाबा की कर्मातीत स्थिति देखने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उसमें मैंने कुछ बातों को विशेष रीति से नोट किया और जो आज के टॉपिक से भी पूरा लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पूर्व अवस्था जो है कर्मातीत अवस्था की जस्ट पूर्व अवस्था है ही एक रस स्थिति, एक रस अवस्था। तो इसीलिए कर्मातीत बनने से पहले एक रस अवस्था को जो हम बच्चों को प्राप्त करना है वो आवश्यक है और उसके बाद ही हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और वो बाबा के उस दिन अंतिम दिन कुछ 5-6 बातों में हमने खास नोट की। तो वैसे बाबा से 62 से लेकर कई बार मिले, कानपुर में भी मिले, पहली बार तो कानपुर में ही मिले थे, 2 बार दिल्ली में मिले बाबा जब वहाँ पर आए, और मधुबन में तो अनेक बार मिले ही, हर वर्ष ही 3-4 बार मिलना हो जाता था। लेकिन जो अंतिम दिन में कर्मातीत अवस्था जो कि जस्ट एक रस अवस्था की संपूर्णता की बात है, तो वो उनमें एक तो पहली बात ये अनुभव करी कि बाबा के सम्मुख जब जाते थे गए तो हमेशा तो जब जाते थे बाबा से मिलते थे, बाबा पूछते थे हाँ बच्चे कोई बात पूछनी है तो हम बताते थे, या बाबा को कोई बात बतानी होती थी बाबा बताते थे। लेकिन इन 2 दिनों में लगभग 6-7 बार बाबा से मिलना हुआ हमारा, और बाबा के सम्मुख जाते थे कि ये पूछेंगे, और जस्ट बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि देते ही बाबा जैसे अंदर उतर गए, उतर गए इन द सेंस मन की बात को, प्रश्न को जान लिया। बाबा ने ये बताया, पूछा, हर बार बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। तो पहली बात जो एक रस स्थिति की हमें अनुभूति हो और जो अंत में कर्मातीत अवस्था तक हम बच्चों को ले जाए, वो ये कई मुरलियों में भी बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आप जो आत्मा सम्मुख आएगी आप उसके मन की बात को तुरंत जान लेंगे, एक अक्षर भी उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसके मन की बात। तो ये जो है एक रस स्थिति का भी ये अनुभव इससे होता था, क्योंकि बाबा से तो कई बार मिले थे, स्थिति एक रस तो यहाँ पर सदा ही ऐसे, क्योंकि बाबा की इतनी ऊंची स्थिति थी, सदा यही महसूस होता था। कितनी बार बच्चे कोई घटना का वर्णन करने आते थे, बाबा वहाँ हमारे यज्ञ को उधर आग लगा दी, वहाँ ये हो गया इतना नुकसान, बस बाबा देखते थे, देखा अच्छा बच्चे, बस एक रस स्थिति, कोई उसका रिएक्शन नहीं ऐसा। और हाँ फिर बाबा बताते भी थे, देखो बच्चे आगे से ऐसी घटना ना हो। और एक जगह हम लोगों ने कुछ प्रदर्शनी करी थी कलकत्ता में, वहाँ हमारे जो परम मित्र हैं उन्होंने आग लगा दी, सारे पंडाल जल गया, प्रदर्शनी पूरी जल गई, सब कुछ खत्म हो गया। बाबा तक समाचार पहुंचा और उस समय हमारे 3 वकील भाई जो बहुत नामी ग्रामी भी थे, संत राम जी, त्रिलोक चंद जी और मोतीलाल जी कानपुर के, उन्होंने बाबा को कहा, यहाँ पर वो आए कि बाबा हमें उन पर केस करना चाहिए, हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है, हर हालत में हम जीतेंगे और हर जाना लेंगे। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप जो है कभी भी बच्चे पर कोई केस नहीं कर सकता, इसीलिए बच्चा चाहे कैसा भी हो लेकिन बाप को ना उसे देहत की इस दृष्टि से कि ये बच्चा आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगा, ये देखना है। तो भाव क्या है इस बात का कि जब हम भी कर्मातीत बनते हैं और कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने से जस्ट पहले हमें भी यही अनुभव होगा कि कोई व्यक्ति सामने आया, उसके मन में क्या चल रहा है, तुरंत ही हम उस बात को पढ़ लेंगे और उसका समाधान। क्यों? क्योंकि अंत में ऐसी स्थिति आनी ही है। बहुत लोग हमारे सम्मुख आएंगे और बहुत प्रकार की, बहन जी भी जैसे बता रही थी, जब दुनिया में इतनी हलचल होंगी तो लास्ट में लास्ट पेपर ही हमारा अति हलचल का है, बहुत अति हलचल, और इसमें पास होने की विधि है अति अचल। बाहर जितनी भी हलचल हो, पास विद ऑनर्स हमें होना है तो वो हमें अति अचल होने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक व्यक्ति था, कई बार उसके मन में बहुत व्यर्थ संकल्प भी आते थे, हलचल भी होती थी बहुत, तो गुरु जी एक उसने किए हुए थे, तो एक बार ऐसी स्थिति उसकी मानसिक थी तो वो गुरु जी के पास आया, तो कई और भी चेले बैठे हुए थे, गुरु जी प्रवचन कर रहे थे, वो भी प्रवचन सुनने लगा और सुनकर उसकी अवस्था भी थोड़ी अच्छी हुई, शांत होने लगी और बड़े गौर से प्रवचन सुन रहा था। इतनी देर में एक भूचाल आया, अर्थक्वेक, पूरा जमीन हिला और आसपास की बिल्डिंगें गिरने लगी, चारों तरफ हलचल ही हलचल, चारों, जब सब, तो सारे चेले निकल करके भागे और और थोड़ी दूर खुले में जाकर खड़े हो गए और वहीं से उन्होंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आइए, आप भी आइए, ये ऊपर जो छपरा है ये तो गिरने वाला है, कभी बहुत तेजी से हिल रहा है, कभी भी गिर सकता है, आपको चोट लग जाएगी, आप आइए। वो गुरुजी वैसे ही बैठे रहे, नहीं आए। बहुत चेलों ने कहा, वो नहीं आए। तो थोड़ी देर बाद भूकंप तो शांत हो गया, और भूकंप जब शांत हो गया तब सारे चेले वगैरह भी वापस आए और गुरुजी को बोला, अरे गुरुजी ये अगर गिर जाता तो आपको कितने नुकसान होता। तो वो सुनते रहे और उन्होंने, जब चेलों ने बहुत कहा गुरुजी हमारे बुलाने पर भी आप नहीं आए, तो उन्होंने कहा, अरे तुमने देखा नहीं, मैं भी तो तुम्हारे संग भागा था। कहा गुरुजी आप तो नहीं, आप तो वहीं के वहीं बैठे हुए थे। नहीं नहीं, तुम देखते गौर से, सब ने एक दूसरे से पूछा कि नहीं गुरुजी आप तो यहीं बैठे हुए थे। तब सुना होगा आपने, गुरुजी ने क्या बोला कि तुम सब बाहर भागे और मैं अंदर भागा, और ये अंदर इसीलिए भागा कि बाहर तो कोई हलचल से बचने का स्थान था नहीं कि इतनी देर में वहां तुरंत पहुंचा जा सके, एक ही स्थान था जो अति अचल था और मैं उधर ही भागा। और वास्तव में इसीलिए मुझे, जब मेरी ऐसी स्थिति थी, अचल स्थान पर मैं भागा, तो मेरे अंदर की हलचल भी समाप्त हो गई। और ये ही मतलब लेक्चर दे रहे थे गुरुजी उसी लेक्चर में, कि आज के लेक्चर का यही सार है कि अति हलचल में भी अति अचल, ये पास विद ऑनर की बात है जो बाबा ने हम बच्चों को बताई है। और इसका हमें अभ्यास होना चाहिए। अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो हम जितना भी कोशिश करेंगे, हम अंत समय जैसा बहन जी बता रही थी, तीनों पेपर एक साथ आएंगे, एटॉमिक वारफेयर का भी, कम्युनल वार का भी और प्राकृतिक आपदाओं का भी, पांच तत्वों का भी। तो जब इतना भयंकर पेपर चारों तरफ से आएगा तो उस समय हम जितना भी, अगर हमने ये प्रैक्टिस नहीं की होगी तो कभी भी हम उस स्थिति में नहीं जा सकते, हटी या चल वाली स्थिति में। तो इसीलिए इसके लिए हमारा यही प्रैक्टिस होनी। तभी बाबा ने कहा अचानक, एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल। ये बहुत काल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अचानक और एवर रेडी पर तो हमारा कंट्रोल है ही नहीं। वो तो आएगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, सिंपली फेस करने की सिफाय। अभी अगर ये बिल्डिंग गिरने लगे और गिर जाए तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत काल का ये ही एक फैक्टर है जो हम हमारे कंट्रोल में है। तो इसीलिए ये बहुत काल का अभ्यास ही हमें अंत समय पास विद ऑनर की तरफ ले जाएगा। और ये हम सबका अनुभव भी है। आप सब भाई बहनों ने भी बचपन में साइकिल चलाना मानो सीखा हो, दो चार बार गिरे भी होंगे इधर उधर, लेकिन फिर सीख गए, बैलेंस हो गया। बहने माताएं बैठी हैं, पहली बार रोटी वगैरह बनाई होगी, बेलना सीखा होगा, तो एक बार में ही तो गोल नहीं बन गई होगी, चिपक भी गई होगी उसके ऊपर थोड़ा बहुत, फट भी गई होगी बहुत टेढ़ी मेढ़ी। लेकिन अभ्यास करते करते, अभी तो ऐसा अभ्यास है कि इधर बात भी कर रहे हैं किसी माता के साथ कुछ भी, और इधर बेल भी रहे हैं, तो अपने आप गोल बन जाए। ये अभ्यास हर चीज में ऐसी चीज है। तो इसीलिए बाबा ने योग में भी कहा, एक मुरली में बोला था, आपने सुना याद भी होगा शायद, हैं कई बच्चे कहते हैं बाबा योग में सुबह आते हैं खास अमृत वेले, और लेकिन बैठते भी हैं लेकिन उतनी एकाग्रता नहीं हो पाती। तो एकाग्रता का कनेक्शन एकरस अवस्था से बहुत बहुत गहरा है, क्योंकि एकरस अवस्था बनने के लिए जितने भी हमारे ज्ञान के सब्जेक्ट वगैरह हैं, जितनी जो धारणाएं हैं, उन सब में एकाग्रता का अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। तो एकाग्रता आज भी ये होता है, सारे दिन के बाद कई बार शाम को भी योग में आते हैं, लाल लाइट होती है, गीत बजते हैं बाबा के अच्छे अच्छे, बहन भी संदली पर आके बैठती है, दृष्टि देती है। लेकिन अगर हमारा मन जो है कहीं पर भी, जहां पर भी उसका लगाव झुकाव है, कोई काम पेंडिंग है, बचे हुए हैं, जिधर भी मन भाग रहा है, उधर अगर हमारा कंट्रोल नहीं हुआ, और ये भागना स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं, ब्रह्मा बाबा का भी भागता था, आपने सुना होगा। तो जब 1936-37 में बाबा भी ज्ञान में आए, तो बाबा के बाद भी जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो बाबा के पास दो डायरियां मिली, लच्छू बहन वो सब डायरी वगैरह को रखती थी, काफी समय तक तो उसके पास थी, अभी पता नहीं है कि नहीं है। तो वो डायरी में बाबा ने लिखा हुआ था, मन बाबा का भक्ता था, तो मन को बाबा ने पत्र लिखा, हे मन, तू जो है बहुत भागता है, मैं राजा हूं, मालिक हूं, और मन तू मेरा मंत्री है, मन बुद्धि संस्कार ये तुम मेरे वो हो सब आसद, मैं मालिक हूं, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं कि मैं तुम्हारे वश में हो गया, मैं आत्मा राजा मन रूपी मंत्री के वशीभूत हो गया हूं, तुम मुझे जहां चाहे वहां ले जाते हो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहता हूं। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, वो इन तीनों की कॉपी जो दादा आनंद किशोर जी से उन्होंने हम बच्चों को, हम लोगों को, भाइयों को, पुराने भाइयों को उसकी कॉपी दी थी। तो वो उसमें बाबा ने लिखा था दूसरे पैरा में, हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे भागती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया कि मैं बिल्कुल तुम्हारे वशीभूत हो गया। लेकिन अब मैं फिर लास्ट में बावन लिखा, लेकिन अब मैं तुम्हें बता देता हूं, कह देता हूं कि हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि तुम, अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा पुनः शक्तिशाली होता चला जा रहा हूं और बाबा ने अब वो ज्ञान योग सिखाया है कि मन को वशीभूत करने का, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा। तो एक रस स्थिति के लिए एक तो ये दृढ़ता की भी बहुत बहुत आवश्यक है, पहला अटेंशन और दूसरा दृढ़ता। एक ही बात के पीछे हमें बार 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 लगना पड़ेगा और बार बार लगने से ही फिर उस बात को हम अनुभव कर सकेंगे कि वो बात हमारे कंट्रोल में आई है। तो इसीलिए एक इस बात की आवश्यकता बहुत बहुत जरूरी है। हमने देखा था मम्मा को कि जब यही हिस्ट्री हॉल है तो यहाँ पहले तीन संदली रहती थी, बाबा की, ये बीच में खाली रहती थी, एक मम्मा की। अगर इस साइड से देखें, बाबा इधर ही कमरे से आते थे और इस साइड वाले दरवाजे से ही एंटर करते थे और बाबा खड़ाऊ पहनते थे, तो जब बाबा आते थे तो खड़ाऊ की खट 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 आवाज होती थी, तो उससे पहले मामा मुरली चलाते थे जो होती थी, और पहले मामा मुरली साधारण रीति से जैसे चलाते हैं, मामा मुरली का सार समान जनरल कोई भी बात, क्योंकि बाबा तो बाद में मुरली चलाते थे और वो सुनते थे, और फिर जैसी खट खट की आवाज आती थी बाबा की खड़ाऊ की, तो बस मामा भी अटेंशन हो जाते थे और मामा अपनी मुरली पहले ही समाप्त कर देते थे। फिर बाबा एंटर करते थे तो मामा नॉर्मल केस में तो जैसे ऐसे मुरली चलाते हैं, फिर जब बाबा आके चलाते थे तो मामा इस तरह, और पूरे टाइम तक एक ही पोज में ममा, बस मुरली एकाग्र चित्त होके बिल्कुल ऐसे सुनते थे कि एक अक्षर भी जैसे मिस ना हो पूरा का पूरा। तो ये एकाग्र चित्त होना होते ये अप टू एक रस स्थिति तक जाने का भी रास्ता है। पूरा टाइम ममा इस तरीके से ही उधर ही बाबा की तरफ देखना सुनना, और भले सामने क्लास है लेकिन उस रीति से। तो भाव यह है कि हम जो भी कार्य करें जिस समय, उस समय एकाग्र चित्त होके, इसीलिए बाबा ने ना एकाग्रता का बहुत इंपॉर्टेंस अभी हाल ही में कई दिन तक मुरलियां एकाग्रता के ऊपर चलती रहीं, और ये एकाग्रता वास्तव में अंत तक बहुत बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये ही एकाग्रता हमें संपन्नता और संपूर्णता की तरफ ले चलेगी, और ये एकाग्रता के साथ साथ और क्या होना चाहिए हमें? बाबा ने एकाग्रता की तो बात बताई है ना, एकाग्रता अगर होगी तो वो एकाग्रता कब होगी? उसके लिए पहली बात तो एकांत, एकांत का अंदर का एकांत और बाहर का एकांत दोनों। एकांत में जाके हम लोगों को भी याद है स्टूडेंट पीरियड में कंबाइंड फैमिलीज होती थी पहले, तो घर में इतना वातावरण नहीं होता था, तो इसलिए एकांत में बगीचे में जाके कई बार पढ़ा करते थे। तो एकांत, बाहर का एकांत वो अंदर के एकांत को भी मदद करता है, एंड वाइस वर्सा। अंदर का एकांत अगर इतना अभ्यास हो जाता है अंदर मन को एकांत करने का, तो वो जो है बाहर के वायुमंडल को भी एकांत। और इसीलिए बाबा कहता है कि जब कोई बड़े सन्यासी, साधु सन्यासी आदि भी ना बहुत एकाग्रचित होते हैं या शरीर छोड़ते हैं या एकदम वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है, तो ये दोनों एकांत एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन शुरू में बाहर का एकांत मदद करता है अंदर का एकांत लाने का, क्योंकि बाहर का एकांत तो स्थूल रीति से मिल जाएगा, कहीं पर भी इस दुनिया में चले जाए एकांत में, वहां समुद्र के किनारे चले जाओ, पहाड़ों पर चले जाओ, कहीं भी बिल्कुल एकांत में। लेकिन वो एकांत में भी मन एकांत हो जाए और इधर उधर न भागे, ये हमेशा संभव नहीं है। तो इसीलिए एक एकांत की ये बात होती है। और एकाग्रता ये जो है अंत समय, और ये ही एकाग्रता जो है हमारी एकाग्रता दूसरे के मन के संकल्पों को पढ़ने में हमें मदद कर रहेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हमारी अपनी कर्मातीत अवस्था होगी तो किसी को भी बाहर आके, क्योंकि चारों तरफ इतना अशांति का वातावरण होगा, लोग आएंगे पूछेंगे और बिल्कुल वैसा ही अनुभव करेंगे जैसा हम लोग साकार बाबा के साथ करते थे। मुझे याद है कितनी बार बाबा के पास जाते थे, बाबा से हम ये पूछेंगे ऐसा करेंगे, और गए बाबा के पास बस एकदम माइंड ब्लैंक हो जाता था, सब कुछ भूल जाते थे। और बाबा जब दृष्टि दे रहे होते थे और वो ऐसा एकदम एकांत का और उसका अनुभव होता था कि बिल्कुल स्मृति नहीं रहती थी कि हम क्या पूछने के लिए आए हैं। बहुत हमारे अनेकानेक भाई बहनों का ऐसा अनुभव है। तो जैसा हम लोगों ने साकार बाबा से अनुभव किया, विशेष करके साकार ब्रह्मा बाबा से, वैसा ही दुनिया वाले अंत समय आके हम सब भाई बहनों से वैसा ही अनुभव करेंगे। और जब वो अपने अनुभव सुनाएंगे, इस चीज में विज्ञान भी ना बहुत बहुत मदद कर रहा है और आगे चलकर भी करेगा। हमें याद है कि सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया में ना, तो वहाँ एक साइंटिस्ट होके गए हैं, और वो साइंटिस्ट ने ऐसा कैमरा इजाद किया था कि कैमरे से जब वो फोटो निकालते थे तो क्या होता था, उनका साइंटिस्ट का नाम था किरलियन, तो किरलियन फोटोग्राफी इसीलिए इसका नाम पड़ गया। तो वो जब करते थे तो व्यक्ति का फोटो के साथ ऑरा भी आ जाता था, ऑरा। और ये ऑरा से क्या होता था, जैसे हम फोटोओं में देखते हैं ना, देवी देवताओं के जो महान हैं, किसी भी धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो महान आत्माएं होके गई हैं, विशेष करके धर्म पिता आदि, उनके लाइट का ऑरा दिखाते हैं। तो उस पर चूंकि मेरा विषय विज्ञान रहा है, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग से हम संबंधित हैं, तो इसलिए रशिया ने, सेंट पीटर्सबर्ग ने, वहाँ की बहन जी का आया कि रशिया ने कुछ करीब 15 साल पहले वो मनाया था अपना वर्ष एनवायरनमेंट और इसी के ऊपर, और किस प्रकार से ये लाइट का ऑरा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उन लोगों ने बुलाया, हमारे विंग वालों ने भी इस पर काम किया, और हमारे विंग की किताब भी है जो इस पर अवेलेबल है, साइंस स्पिरिचुअलिटी एनवायरनमेंट एंड ऐसे करके 4 बातें हैं, वो पूरा का पूरा इसके अंदर है। तो वहाँ पर हम गए सेंट पीटर्सबर्ग में, तो वो किरलियन तो अभी नहीं रहा साइंटिस्ट, लेकिन उसका ये जो है किरलियन फोटोग्राफी का बहुत बहुत बड़ा विस्तार में फैला हुआ है। तो उनका जो हेड था उसको बहन जी ने बुलाया था, खास करके उनसे अच्छा परिचय था, तो उससे हम लोगों का काफी इंटरेक्शन हुआ। और उसने बताया कि मेरे पास पूरे विश्व भर से लोग आते हैं, हिंदू हो मुस्लिम सिख ईसाई, हर धर्म वाले हर देश वाले बहुत लोग आते हैं, और वो आके यहाँ पर जब आते हैं, हम लोग उनका किरलियन फोटोग्राफी से फोटोग्राफ करते हैं। और केवल ऑरा ही नहीं, ऑरा तो सम टोटल है, हमारे हर अंग का ऑरा होता है, नाक का, कान का, मुंह का, और हाथ का, उंगलियों का, सब। तो वो पूरे इंस्ट्रूमेंट वगैरह लेकर के सेंटर पर आया था अपने आदमियों को भी, तो उसने हम लोगों का वो और भी ऑरा, अलग अलग उंगलियों, अलग अलग अंग का टोटल, और ये सम टोटल है ऑरा, लिया फोटो लिया। उसके बाद उसने कहा इसका तो रिपोर्ट बनाने में, इंटरप्रेट करने में मुझे 5-6 दिन लगेंगे। तो वो उसके बाद चला गया, 2 दिन तक पूरा सारा उसने डेटा कलेक्ट किया। और उसके बाद जब वो आया तो उसने बताया कि भाई ये जो ऑरा है आपका सबका, तो जो भी आते हैं धर्म वाले और ब्रह्मा कुमारी वाले और भी, तो सबका मैं ऑरा निकालता हूँ, और ये ऑरा जो है ये वो ऑरा, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है। उसने बताया कि सब विश्व भर के कोने कोने से लोगों के, हर धर्म वालों के ऑरा मैंने निकाले हैं, लेकिन जितना अच्छा ऑरा ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है उतना अच्छा ऑरा किसी का नहीं होता। ये क्यों? क्योंकि और लोग जो है ना धर्म वाले, वो कुछ चैंटिंग करते हैं, मतलब कुछ भी, वो बाबा हमें अंदर तक पवित्र बनाता, संकल्पों तक भी, विचार स्वप्न तक भी, बाबा जितना पवित्र बनाता है हमें, इस कारण से वो जैसी वृत्ति होती है फिर वैसे ही वाइब्रेशन होते हैं और फिर वैसा ही वायुमंडल होता है। तो इसीलिए बाबा हमारे वृत्ति तक को पवित्र करता है, किसी भी धर्म वाले को वो वृत्ति तक पवित्र कोई भी धर्म वाला नहीं। स्थूल चीजों में वो करेंगे लेकिन फिर भी वो धर्म वाले और उतना नहीं करते। तो ये तो हमने खुद वहां अनुभव किया, काफी इंटरेक्शन भी उससे पूछा करा, तो उसने यही बताया कि जैसे संकल्प होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, वृत्ति होती है, उसी रीति से हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं और सबका ऑरा बनता है। तो विज्ञान भी अब कई चीजों में है, आत्मा तक तो विज्ञान ने काफी प्रूव भी किया है, भले कॉन्शियसनेस नाम दे उसे या कुछ भी दे, लेकिन वो एक चैतन्य सत्ता है। पहले तो नहीं तो वो ब्रेन या शरीर को ही मान लेते थे, अभी उन लोगों ने हमारे बाबा ने जो जो बात बताई है, पहले विज्ञान एकदम उसके अपोजिट था, अब धीरे धीरे करके कितनी बातों को उसने एक्सेप्ट कर लिया है। और उनकी एक किताब भी आई है, उनके एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, और पुनर्जन्म के ऊपर बहुत है, एक मेडिकल कॉलेज का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसने लिखी है वो किताब, और मुझे भी, मैं जब वहाँ गया था मुझे भेंट करी गई थी, मैंने बस एक दिन में ही उसे पूरा, बहुत इंटरेस्टिंग किताब, हम लोगों के पूरा हम लोगों का ही ज्ञान है, कैसे एक व्यक्ति जो है, एक यंग लड़की ही 25-26 साल की, और इतना होने के बाद भी उसे पानी से बहुत बहुत डर लगता था, एकदम घर में भी पानी कहीं देख के एकदम उसको कुछ वो हो जाता था। तो वो फिर बताया उसने कि किस प्रकार से इसने इसको वो बैक लाइफ में है, हिप्नोटिज्म में उसमें भेजा वहां पर, ये जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज का है, उसने उसने हिप्नोटिज्म में भेजा, और उसे भेज करके पहली बार तो वो नहीं जा सकी, दूसरी बार, फिर 2-3 बार के बाद शी जंप्ड इन हर अर्लियर लाइफ, और वो पूरी साइंटिफिक उसने करीब 18-19 जन्म का अपना बताया पूरा एक एक करके, और वो पूरा इसी इन्हीं उसका था, द्वापर कलयुग का, लेकिन वो पूरे के पूरे उसने बताए। और इस रीति से ये उनको वो देता था, और वो इंस्ट्रक्शन कि आप वहाँ जाओ, तो उसने कहा कि 2 जन्म के बीच में क्या होता है तो पूछ के आना तुम। तो ये इसने बताया कि एक जन्म में जैसे मैं शरीर छोड़ रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ बहुत टनल में से, और सूक्ष्म वतन का पूरा वर्णन किया उसने। सूक्ष्म वतन नाम तो नहीं बोला, लेकिन ये बोला वहां पर ऐसे वाइट मास्टर्स, उस किताब में मास्टर्स लिखा हुआ है, और किताब का नाम ही है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। वो बहुत अवेलेबल है, आप लोग पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, और अमेरिका के उसने क्या नाम भूल गया मैं, डॉक्टर ब्लैंक वाइज, तो उनका WEIS ऐसे करके उनकी स्पेलिंग है लिखी है। तो विज्ञान बहुत बहुत चीज में हमारे करीब, और विश्व भर के लोग आ रहे हैं, और बाबा ने कई बार बताया जब ये विज्ञान भी आपकी बातों को सिद्ध करेगा तो दुनिया तुरंत मान लेगी। अभी हम लोग बोलते हैं वो समझते हैं स्पिरिचुअल है, अब विज्ञान ने बोला वो चांद पर उतर गए, फोटो दिखा दिए, दुनिया ने तुरंत मान लिया। इसी तरीके से एक एक बात अब उस तक पहुंच रही है। तो ये कॉन्शियसनेस की बात भी हुई, और एक रस स्थिति की भी बिल्कुल, इसका भी वर्णन उसके अंदर किया हुआ है कि जो अंत में ये जो स्थिति, अंत का तो वो नहीं जानते, लेकिन जो वेरी हाई क्लास योगी होते हैं मेडिटेशन वाले, उनके पास जब जाते हैं तो बस आप खड़े रहिए, कुछ भी मन में विचार करेंगे वो आपको तुरंत बता देंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा का भी हमने देखा। दूसरी बात, अब कई चीजें देखी इस रेफरेंस में, मैं कई बार मैंने बताई हैं, इसीलिए मैं उनके उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों से लगती जो बात है, क्योंकि हम लोगों को भी कर्मातीत बनना है, हम लोगों के भी अंत में इस अवस्था को प्राप्त करना है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि बिल्कुल ब्रह्मा बाबा में जो देखा और मैंने अंतिम दो दिन में देखा कि बाबा के भी कुछ काम पेंडिंग रहे हुए थे, 3-4 काम तो रह गए थे, तो कोई भी काम हमारा पेंडिंग ना रहे, पेंडिंग माने रहा हुआ, हम सोच रहे हैं ये करेंगे करेंगे, कई बार हम टाल देते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं कर पाते, और अगर उस दौरान अगर शरीर छूट जाए तो फिर वो काम तो बिना पूरे किए ही हम चले गए, तो इसलिए उसको पूरा करने के लिए फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा का क्या था कि बाबा को जैसे ना अंतिम दो दिनों में पूरा ये आभास हो गया था कि मैं ये शरीर छोड़ने वाला हूँ, तो जो जो पेंडिंग काम थे, बिल्डिंग लेनी थी नक्की लेक वाली, जो म्यूजियम बना है वो करा बाबा ने, इसके अलावा बहुत सारे पत्र लिखने थे, पत्रों के जवाब वो बाबा ने फटाफट उसी दिन ही बैठ के लिखवाए यशोदा जी को। उस दिन बाबा ने सुबह क्लास नहीं करी थी, इसीलिए बस बाबा ने आए हिस्ट्री हॉल में आए थे, योग कराया, तो इसीलिए बाबा ने रात को सोने से पहले उस क्लास को प्रीपोन्ड करके कि सबको कहा आज बच्चे 7:30 तक वहाँ क्लास में आ जाएं भोजन वोजन करके, और बाबा ने फिर वो क्लास कराई पूरी की पूरी। और जब आत्मा कर्मातीत होती है तो सारे कर्म भोग उसके चुकतु हो जाते हैं, अंतिम साधन हमारा ये शरीर है कर्म भोग चुकतु करने का, क्योंकि आत्मा तो यहीं से ही निकलनी है जानी है, तो जो संबंधियों के होंगे, तन मन धन के होंगे, दूसरे लोगों के होंगे, वो सब तो हमें अपने कॉन्शियसनेस में ही पूरे करने हैं, किसी का भी कोई हिसाब किताब ना रह जाए, और न रह जाए वो तो मालूम नहीं होता है, वो होता है, लेकिन किसी से भी हमारा नया हिसाब किताब न बने, वो खास देखना है। किसी से भी अगर थोड़ा बहुत भी नया हिसाब किताब बना तब और कौन सा जन्म होगा और क्या एक्टिविटी होगी, इसीलिए ये देखना बहुत बहुत आवश्यक है, किसी से भी नया हिसाब किताब ना बने। और इसके लिए भी बाबा ने बहुत बातें बताई हैं, अंतिम समय, क्योंकि इस ये शरीर ही ऐसी चीज है जो आत्मा को रोके रखता है, आत्मा निकलना चाहती है, कितनी बार भक्ति में हम कहते हैं तो उसकी आत्मा निकल नहीं रही है, बस इतने दिन से वो है और बेटे को याद कर रही है या पोते को या जो भी जिसकी तरफ लगा झुकाव होता है, और जब वो आ जाता है, देख लिया, कोई बात करने असंभव हुआ कर लिया, फिर वो आत्मा निकल जाती। तो अगर जहां लगाव झुकाव कुछ भी रहा तब तक हम चाहते हुए भी इस शरीर को नहीं छोड़ सकेंगे, ये शरीर हमें खींचे रहेगा अपनी तरफ, और इसलिए ये आवश्यक है। बाबा ने उस दिन भी ना मुरली चलाई और अंतिम समय तक भी ना बाबा ने ये हर बच्चे को अपना भी देखा, बाबा से बच्चों ने पूछा था कि बाबा आपको क्या अनुभव रहा, आप सब लोगों ने भी पढ़ा होगा अव्यक्त मुरलियों में कि अंत में योग बल का और कर्म भोग का बहुत युद्ध था, ये हम सबका ही चलना ही है, क्योंकि योग बल भी कर्म भोग निकलते 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 भी आत्मा को खींचे रहेंगे, जब ब्रह्मा बाबा को भी वो खींचे रहे तो हम और आप तो क्या चीज है। तो इसीलिए ये अंत समय तक वो रहे तो एक तो पेंडिंग काम भी हमारा कोई न रहे, बच्ची का मतलब समर्पण करना है या सेंटर बनाना है या कोई बड़ा प्रोग्राम करना है, मुझे इतना धन लगाना है, कोई भी अच्छा कार्य हो यज्ञ के फेवर में है, हमारे अपने फेवर में, क्योंकि हमारी उन्नति और यज्ञ की उन्नति तो साथ ही साथ जुड़ी हुई है, तो इसीलिए वो काम अधूरा ना रह जाए। अब ये देखना है कि वो पेंडिंग काम में ना रहे, और इसीलिए वो अगर पेंडिंग रह गया तो क्या है कि फिर पुनर्जन्म लेके उस कार्य को पूरा करना पड़े। खैर, अभी का जो मुख्य भाव ये है कि हमारी जो एक रस अवस्था की बात है ना, उससे पहले जो बाबा ने बताया अचल अडोल, ये अवस्था भी बहुत आवश्यक है अपनी परिस्थितियों के लिए भी बाबा ने, और हर प्राणी मात्र के लिए, कोई भी प्राणी मात्र हो हर एक के लिए। हमारा वसुधैव कुटुंबकम की फिर, जो वसुधा के संपूर्ण सृष्टि के राजा बनने वाले हम बच्चे हैं, तो जब तक वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पालन नहीं करेंगे तो वहां राजा कैसे बनेंगे। तो इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग भी यहाँ पर होनी चाहिए, जिससे कि ये न रहे हर एक के प्रति वो बाबा भोग लगता था, और सबसे पहले भोग कौन खाता था, एक छोटी सी चिड़िया, बस भोग बीच की संभली पर भोग लगता था। साकार बाबा देखते थे, संदेशी गई, संदेशी ने आके संदेश वगैरह सुनाया, फिर बाबा ने वो डिब्बी खोली और डिब्बी में जो भी भोग बनाया हुआ था, हलवा या जो हथेली पर लेते थे, और फिर बाबा कहते थे आओ बच्ची आओ आओ, तो हम सब देखते थे किस बच्ची को बाबा बुला रहे हैं, आओ बच्ची आओ। तो बस पीछे के दरवाजे से हिस्ट्री हॉल से एक छोटी सी चिड़िया इतनी बुलबुल जैसी कू 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 करते एक एक कदम रखते, धीरे धीरे एकदम सीधे उड़ के आ जाए नहीं, बिल्कुल धीरे 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 करके आती थी बाबा के उछल के ऊपर, मेज पर आई, मेज से हाथ पर आई, और हाथ में जो बाबा ने ये लिया होता था उसको वो खाती थी, और फिर खा के फिर धीरे धीरे कू 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 अपनी भाषा में शायद थैंक्स करती हो बाबा को, है ना, और उसके बाद चली जाती थी धीरे धीरे करके वो। तो बात क्या है कहने की, ये तो चलो चिड़िया की बात है, हार्मलेस क्रिएचर है। सांप का भी बताते हैं, आपने सुना ही होगा, जहाँ अभी हिस्ट्री वो है हमारी डिस्पेंसरी, तो उसके बाहर ना अपने 5-6 भाई लोग इकट्ठे थे, और बाबा क्लास के बाद किचन का चक्कर लगा के नाश्ता देख के तब आते थे, तो बाबा आ रहे थे उधर से, इधर बाबा ने भीड़ देखा, रे क्यों बच्चा भीड़ क्यों लगा रखी है, कि बाबा आप इधर नहीं आओ, ये बहुत बड़ा सांप है और बहुत तेजी से फुफकार रहा है, और इसको फन पर हमने ये डंडा रखा हुआ है, और अभी भी ये बहुत इधर उधर कर रहा है छुड़ाने की, और एकदम मतलब खतरा है यहाँ पर। तो बाबा ने कहा रे 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 बच्चे को तकलीफ मत दो, मारो नहीं बच्चे को। तो बाबा पास में आए एकदम, और बड़ा आश्चर्य की बात है, बाबा पास में आए और वो एकदम जितना भी फन उसका था वो डंडे के बचा हुआ अलग वो फुफकार रहा था, बस बाबा उसके सामने खड़े हो गए। अब बाबा ने कहा बच्चों को, बच्चे इसको और तकलीफ में मत दो, इसको मारना नहीं, और बस बाबा खड़े और जैसे वो दृष्टि ले रहा हो, और धीरे 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 वो एकदम शांत हो गया, और बाबा ने कहा एक बच्चे को, बच्चे इसका पूंछ पकड़ के मटके में डालो और कपड़े से बांध के जंगल में छोड़ो। तो जो भी भक्ति मार्ग की बातें हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात है, और कितनी जो बातें भक्ति मार्ग में हम लोग करते हैं वो वास्तव में यही के ही हैं। जैसे चार धाम भक्ति मार्ग के फेमस हो गए, हमारे चार धाम हमारे यहाँ के हैं। और उसका तो अभी कहने का भाव ये है कि जो भी हमने सुना है उस बात का हम तंत्र निकालें, रस निकालें, और फिर उसको देखें हम कितना उसमें से फॉलो कर रहे हैं और बाबा जो है हमें क्या चाहता है। तो बाबा का भी अंत में ये भी देखा, लास्ट वाली बात कि अंतिम दिन बाबा ने जो मुरली चलाई एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, ना गला साफ करने की जरूरत पड़ी। तो वो इस बात का प्रतीक है कि कर्म भोग के ऊपर योग बल ने अंत में विजय प्राप्त कर ली। और लास्ट जो है बाबा का शरीर जब छूटा, वो दृश्य हमें भी देखने का सौभाग्य मिला। हिस्ट्री हॉल में हम ऊपर टहल रहे थे और एक ही दिन बाबा ने पहले ही कहा था कि बच्चे जब रात को मुरली के बाद ऊपर टहल सकते हो टहलते रहो, और यहाँ बेहद में आते हो तो बुद्धि भी बेहद में हो जाएगी। तो हम जस्ट टहल रहे थे 18 जनवरी को, तो हमने देखा जमुना प्रसाद भाई बड़ी तेजी से साइकिल लेके निकले, रात को करीब 9:30 के करीब होगा और भी बाद में। तो हमने पूछा, रे आप कहाँ जा रहे हो? कि भाई बाबा की तबीयत ठीक नहीं है और दादी ने बोला है डॉक्टर को बुला के लाओ। तो बस वो उधर गए और हम भी उतर के पीछे की तरफ कमरे की तरफ आए। और बाबा का कमरा अभी है, पहले सामने ये सब तो बाद में बनाया है, पीछे वाला ही दरवाजा था। उधर ही गए तो देखा बस बाबा चारपाई पर बैठे हैं, बाबा का हाथ में हाथ, लेकिन दादी ने जैसे बाबा का व्यू रोका हुआ था। हम कमरे के दरवाजे पर ही खड़े हो गए और वहीं से ही देख रहे हैं कि जैसे दादी दृष्टि ले रहे हैं और धीरे 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 बाबा अव्यक्त हो गए। लेकिन बाबा का ये शरीर जो है ना, वो पूरा लगभग 65 घंटे बाद ही जलाया गया। 18 को शरीर छोड़ा, 18 की रात रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, और 21 को शरीर को अग्नि संस्कार किया गया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही एकदम चमकता रहा, ना उसमें कोई दुर्गंध आई, ना बाबा को कोई इंजेक्शन दिया गया था क्योंकि हम तो यहीं थे, साक्षी थे, और ना कोई लेप लगाया गया। ये है प्रकृति जीत का प्रतीक। तो जैसे हम माया जीत बन रहे हैं आत्मा का, ऐसे ही हमें 5 तत्वों का भी प्रकृति जीत बनना है, और ये बनेंगे, दोनों होंगे, तब ही हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। तो हमारा अंतिम ये भी होना चाहिए कि इस शरीर से हमारे जो भी हिसाब किताब अगर हैं, कभी भी उसको हम कोसे नहीं, कभी भी उसको हम नेगेटिव वाइब्रेशन अपने शरीर को भी ना दें। ये क्या हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, हम लोगों ने सुना है बाबा बम्मा वगैरह, इतना पेन होता था, ऑपरेशन भी हुआ, डॉक्टर आता था पहचान ही नहीं पाता था कि किसका ऑपरेशन हुआ, एकदम ऐसा बाबा का चेहरा खिला हुआ, मामा का चेहरा खिला हुआ। तो हमें भी शरीर से डिटैच होने का अनुभव, और इसमें ही बाबा ने मास्टरी कर ली थी। एक सेकंड में ही न्यारे हो गए शरीर से और फिर रहे ऊपर बाबा की याद, और एक सेकंड में ही शरीर में आए, पार्ट बजाया, जो भी पार्ट, फिर न्यारे हो गए। तो जाने और आने का ये अभ्यास जितना हमारा परिपक्व होगा, वो ही हमारी एक रस अवस्था का सूचक है कि बस चाहे आत्मा है, न्यारी हो गई, चाहे आई वो, लेकिन हर रीति से हम एकदम न्यारे होकर कर, समय हो गया है, इसीलिए हम सब बस यही संकल्प लेके उठे हैं कि भट्टी में आए हैं तो हमें बाबा की तरह ही कर्मातीत बनकर के जाना है और फिर बाबा आपके साथ ही हमें सतयुग में आना है, साथ में रहेंगे और साथ साथ पार्ट प्ले करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।